बंगले के भीतर उस रात अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। बाहर बगीचे में झींगुरों की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, लेकिन अंदर का माहौल किसी तूफान से पहले की तरह भारी था। ऊपर की मंजिल पर विक्रम अपने कमरे में अकेला बैठा था। सामने लकड़ी की बड़ी मेज पर महंगी शराब की बोतलें बेतरतीब तरीके से पड़ी थीं। कमरे की पीली रोशनी उसकी लाल आंखों पर पड़ रही थी, जो गुस्से और नशे से भरी हुई थीं। उसके हाथ में आधा भरा गिलास था। उसने एक लंबा घूंट लिया, फिर खिड़की से बाहर अंधेरे आकाश की ओर देखते हुए खुद से बुदबुदाया, रैना, तुझे क्या लगता है, तू मुझसे छूटकर चली गई तो आज़ाद हो जाएगी? इतनी आसानी से मैं तुझे चैन से सांस लेने दूंगा? भूल गई है कि मैं विक्रम हूँ। जो चीज़ मेरी पकड़ में आ जाए वो मेरी मर्जी के बिना कहीं नहीं जा सकती। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन हर शब्द में गहरी आग थी। उसने गिलास मेज पर इतनी जोर से पटका कि आधा शराब बाहर छलक पड़ी। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। तू सोचती है कि एक छोटे से फ्लैट में जाकर मुझे भूल जाएगी? नहीं रहना, मैं तेरा साया बनकर तेरे साथ रहूंगा, और जिस दिन तूने समझा कि तू आज़ाद है, उसी दिन मैं तुझे अपने कदमों में झुका दूंगा। विक्रम कुर्सी पर पीछे झुक गया। शराब का असर उसके शरीर में फैल रहा था, पर उसके जहन में बस एक ही नाम गूंज रहा था, रैना। कमरा धुएं और शराब की गंध से भरा हुआ था। दीवार पर लगी बड़ी पेंटिंगें भी जैसे उस रात की बेचैनी को देख रही थीं। तभी दरवाज़ा हल्के से खुला। साड़ी की सरसराहट और कदमों की आहट से विक्रम ने पलट कर देखा। अंदर मोनी थी। वो सजी धजी थी, माथे पर बड़ी बिंदी, हाथों में सुनहरी कंगन और चेहरे पर हल्की मुस्कान। ओह, तो यहाँ छुपे बैठे हो, मोनी ने कमरे में आते हुए कहा। मैं सोच रही थी कि आज तुम इतनी चुप क्यों हो। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने गिलास फिर से उठाकर भरा और एक और घूंट भर लिया। मोनी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। जानते हो, मैं आज बहुत खुश हूं, आखिरकार वो लड़की इस घर से चली गई। विक्रम की आंखें एक पल के लिए चमकी, लेकिन उसने चुप्पी साथ ही रखी। मोनी ने आगे कहा, तुम सोच भी नहीं सकते मुझे कितनी राहत मिली है। वो घटिया औरत हमारा रिश्ता खराब करना चाहती थी, तुम्हें मुझसे दूर करना चाहती थी, लेकिन अच्छा हुआ जो उसने खुद ही ये घर छोड़ दिया, वरना मैं उसे इस घर से धक्के मारकर निकाल देती। विक्रम ने हल्की हंसी में कड़वाहट खोली। तुझे लगता है वो इतनी आसानी से छूट जाएगी? मोनी उसकी बात समझ नहीं पाई और बोली, क्यों नहीं, वो चली गई हमेशा के लिए, अब हमें परेशान करने वापस नहीं आएगी। और सच कहूं तो विक्रम, तुम्हें उसका इतना ख्याल रखने की जरूरत भी नहीं थी, उसने इस घर में रहते रहते बस नाटक किया। विक्रम अचानक कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी लंबी कदकाठी और लाल आंखें मोनी के सामने किसी दहाड़ते शेर जैसी लग रही थीं। तुम उससे नहीं जानती मोनी, उसकी आवाज़ भारी थी। रैना का हर सांस हर कदम मेरे नाम से बंधा हुआ है। वो चाहे जहां चली जाए, पर उसकी आज़ादी का फैसला मैं करूंगा। मोनी कुछ पल के लिए सन रह गई, फिर होंठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान लाकर बोली, तो तुम अभी भी उसी का नाम ले रहे हो? विक्रम, मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुम्हें मेरे साथ खुश होना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हें तो उसी की परवाह है। विक्रम ने अपना चेहरा मोनी के बेहद करीब लाते हुए धीमे से कहा, तुम मेरी बीवी है, ये सच है, लेकिन रैना, वो मेरी चाह है, मेरी जिद है, और विक्रम कभी अपनी जिद हारता नहीं। मोनी की आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों उतर आए। उसने पलट कर कहा, तो ठीक है, अपनी जिद के पीछे भागते रहो, मैं तो बस यही सोचकर खुश हूं कि वो औरत इस घर से चली गई, तुम्हें भले ही फर्क पड़े, मुझे नहीं। इतना कहकर वो मुड़ी और कमरे से बाहर निकल गई। उसके कंगनों की खनक दरवाजे तक गूंजी और फिर सन्नाटा पसर गया। विक्रम खिड़की के पास जाकर बाहर अंधेरे आकाश को घूरने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी शिकारी की जो शिकार को भागते हुए देखता है और जानता है कि एक दिन उसे पकड़ ही लेगा। उसने खुद से कहा, भाग रहना, जितना भाग सकती है भाग ले, लेकिन याद रख, विक्रम का साया तुझ तक जरूर पहुंचेगा, और जब मैं तुझे पकड़ूंगा तो तुझे अपने सामने झुकाना ही पड़ेगा। कमरे में घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। शराब की खाली बोतलें और गिरे हुए गिलास उस खामोशी के गवाह बने खड़े थे। उस रात विक्रम के भीतर का तूफान और भी गहरा हो गया था, एक ऐसा तूफान जो रैना के नए सफर को कभी चैन से जीने नहीं देगा।